प्रजानामीह योजितः रक्षिता वृत्तिदः स्वेषु सेतु सुस्थापिता प्रथा। अहं दंडोधरो राजा प्रजानं इह योजिता रक्षिता वृत्तिदः स्वेषु सेतु सुस्थापिता प्रथा। अहं दंडोधरो राजा प्रजानामिह योजिता रक्षिता वृत्तिदः स्वेषु सेतु सुस्थापिता प्रथा। अहं दंडोधरो राजा प्रजानं इह योजितः रक्षिता वृत्तिदः स्वेषु सेतु सुस्थापिता प्रथा। अहं दंडोधरो राजा प्रजानं इह योजिताः रक्षिता वृत्तिदः स्वेषु सेतु सुस्थापिता पृथक् मतय। अहं दंडोधरो राजा प्रजानं इह योजितः रक्षिता वृत्तिदः स्वेषु स्वेतु सुस्थापिता प्रथा। शब्दार्थ अहम् मे दंडधरः राजदंड धारण करने वाले राजा राजा प्रजानम प्रजा का यह इस संसार में जो जीतः तत्पर रक्षिता रक्षक वृत्तिदः आजीविका देने वाला स्वेषु अपने आप में सेतुषु अपनी अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं में स्थापिता स्थापित पृथक अलग अलग। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। राजा पृथु ने कहा भगवत कृपा से मैं इस लोक का राजा निजुक्त हुआ हूँ और मैं प्रजा के ऊपर शासन करने उसे विपत्ति से बचाने तथा वैदिक आदेश से इसे नहीं होना चाहिए वैदिक आदेश को स्थापित करने के लिए ये होना चाहिए। चलिए वैदिक आदेश से स्थापित सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक की स्थिति के अनुसार उसे आजीविका प्रदान करने के लिए यह राजदंड धारण कर रहा हूं। मेरे पीछे कृपया दोहराइए। राजा पृथु ने कहा भगवत कृपा से मैं इस लोक का राजा निजुक्ति हुआ हूं और मैं प्रजा के ऊपर शासन करने उसे विपत्ति से बचाने तथा वैदिक आदेश से स्थापित सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक की स्थिति के अनुसार उसे आजीविका प्रदान करने के लिए यह राजदंड धारण कर रहा हूं। तात्पर्य यह माना जाता है कि राजा की नियुक्ति श्री भगवान द्वारा अपने लोक विशेष के हित की रक्षा के लिए ही की जाती है। प्रत्येक लोक में एक प्रमुख व्यक्ति होता है, जिस प्रकार आजकल प्रत्येक देश का एक राष्ट्रपति होता है। यदि कोई राष्ट्रपति या राजा बनता है तो यह समझना चाहिए कि यह सुअवसर ईश्वर प्रदत्त है। वैदिक पद्धति के अनुसार राजा को ईश्वर की प्रतिनिधि मानकर प्रजा द्वारा उनकी ईश्वर का ही समान आदर किया जाता है। वास्तव में परमेश्वर समस्त जीवात्माओं का और विशेष रूप से मनुष्य का पालन करता है। कुछ शब्द हैं, बहुत सुश्रृंखलित और सुमार्जित नहीं है, श्रुति कटु लगता है, जैसे भगवान के लिए कहा जाता है पालन करता है, वो कुछ शुद्ध नहीं है। फिर भी श्रोताओं को चाहिए कि अच्छी तरह से समझ लें कि भगवान को अच्छी तरह से बोलना चाहिए, पालन करते हैं ऐसा शब्द होना चाहिए, जिससे वो उच्च पद प्राप्त करे। निम्न जन्मे में अनेक जन्म लेते रहने के बाद जब जीवात्मा को मनुष्य की ज्वनि प्राप्त होती है और वह सभ्य जीवन बिताता है तो समाज चार श्रेणियों में बांटा जाता है, जैसे कि भगवान ने भगवत गीता में कहा है, चतुर्वर्ण्यं मया सृष्ट गुणा कर्म विभागसः। चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र। और जैसा कि पृथ्वी महाराज ने घोषणा की कि प्रत्येक वर्ण की प्रत्येक व्यक्ति को जीविका उपार्जन का उपयुक्त साधना प्राप्त होना चाहिए। राजा या सरकार का कर्तव्य है कि वह देखे कि लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करें तथा अपने अपने व्यवसाय में लगे हो। आधुनिक समय में सरकारी या राजकीय संरक्षण प्राप्त न होने से सामाजिक व्यवस्था ढह गई है, अर्थात अव्यवस्थित हो गई है। किसी को भी ज्ञात नहीं है कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य अथवा कौन शूद्र है। लोग अपने को जन्म से किसी वर्ण विशेष से संबंधित बताते हैं। सरकार का कर्तव्य है कि यह वर्णाश्रम व्यवस्था स्थापित करे जिससे संपूर्ण संसार सुसंस्कृत हो सके। यदि मानव समाज चार सामाजिक वर्णों का पालन नहीं करता तो वह पशु समाज के तुल्य है, जिसमें न शांति और न संपन्नता रहती है, केवल अशांति व्याप्त रहती है। आदर्श राजा के रूप में महाराज पृथ्वी ने वैदिक सामाजिक व्यवस्था का दृढ़ता पूर्वक पालन किया। प्रजायते इति प्रजा। प्रजा शब्द का अर्थ है जो जन्म लेता है, अतः पृथ्वी महाराज ने अपने राज्य में जन्मे सभी लोग प्रजानाम, अर्थात ये बहुवचन में है, षष्ठी बहुवचन में है, जिसमें कहते हैं कि सारी प्रजाओं की, अर्थात उसमें पशु पक्षी अन्य इतर जीव भी सम्मिलित है, को सुरक्षा प्रदान की। प्रजा का अर्थ न केवल मनुष्य है, वरन इसमें पशु वृक्ष तथा अन्य सजीव प्राणी भी आते हैं। आधुनिक समाज के मूर्ख तथा धूर्त जन सरकार की उत्तरदायित्व क्षेत्र को नहीं जानते। पशु भी उस भूमि के नागरिक हैं जिसमें उनका जन्म होता है और उन्हें भी जीने के अधिकार प्राप्त हैं। पशुओं की थोक हत्या से पशुओं की जनसंख्या में गड़बड़ी होने के कारण कसाई देश तथा सरकार का भविष्य संकट में पड़ जाएगा। ये प्रेडिक्शन देखिए कितने साल पहले प्रभुपाद लिखे हैं, लगभग 75 में ये चौथा स्कंद उन्होंने संपन्न किए थे दिल्ली में, तो आज लगभग 34-35 साल हो गया है और ये वास्तविक अभी साकार रूप में ये घटना को हम देखते हैं। सरकार देश तथा कसाई, अर्थात सभी हम संगठापन्न हैं। ओम अज्ञान तमिरंधस्य ज्ञानं जनसलकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीजुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नित्वं त्वं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखानितंस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेषु गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांसाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानं पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायतख्यो विश्वंभरौ द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। यं प्रवजन्तम् अनुपेत्यमपेत्य कृत्यम् दैपायन विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवाभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मि। यं स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारैकं अध्यात्म दीपमति ते तीर्थतम तमंधम संसारिणा करुणाह पुराण गुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरु मुनीनम् जत्कीर्तनं जत्स्मरणं जदरहणं जदवंदनं जश्रवणं जदिक्षणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मस तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः ज्वन्त प्रविष्टममुवाच इमं प्रसुप्तं संजीवयति अखिल शक्ति धर स्वधाम्ना अन्यस्य हस्तचरणयो श्रवणं तु कादिन् प्राणं नमः भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणं नमः भगवते पुरुषाय तुभ्यं हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अभी ये जो प्रसंग चल रहा है आप लोग को विदित है ये दोनों के बीच में वार्तालाप है। किसके बीच में? दोनों महाभागवतम है। कौन? मैत्रेय और विदुर के संवाद है। और ये प्रसंग तीसरा स्कंद से शुरू हुआ है। जब परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे कि जो रुद्धिमत गृह जो विदुर जी की गृह के वर्णन करते हैं कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमल से उस गृह को पावन कर दिए थे, उस गृह को त्याग करके विदुर जी क्यों तीर्थ यात्रा की, इस प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी इस प्रसंग को वर्णन करते हैं किस घटना की वजह से विदुर जी ने गृह त्याग किए और उन्होंने यमुना के तट पर उद्धव जी से उनकी मिलन हुई। भगवान के श्री कृष्ण के प्रसंग में चार अध्याय तक चर्चा हुई। उसके बाद उद्धव ने उनको प्रेरित किए जो भगवान श्री कृष्ण धराधाम छोड़ते समय मैत्री जी को आदेश दिए थे कि मेरे भक्त विदुर जी को इस प्रसंग सुनाना जो चतुर्श्लोक के रूप में है। तब फिर विदुर जी ने मैत्री जी से गंगा तट पर मिले और उनसे सृष्टि के संबंध में प्रश्न किए जो दोनों ही सुने थे उद्धव और मैत्रेय। तो फिर आगे इस प्रकार प्रसंग 10 प्रकार की सृष्टि बरहा भगवान की कथा और फिर मनुवंश के चरित्र और आखिर में कपिली उपदेश इस तीसरा स्कंद की समाप्ति होने पर फिर चौथा स्कंद में मैत्री जी ने विदुर से मनुवंश का पुत्री की वर्णन कर रहे हैं आकुति प्रसूति और देवहूति। आकुति की विवाह रुचि प्रजापति से हुई थी जिनसे यज्ञ भगवान की प्रकट हुई और प्रसूति की साथ विवाह हुई दक्ष प्रजापति की और दक्ष प्रजापति की जो पुत्री हैं उनकी वंश की विवरण की और फिर देवहूति का विवाह कर्दमुनि से हुई थी जो कि पहले से विदुर जी ने बोल चुके हैं। फिर चौथा स्कंद में दक्ष प्रजापतियों की जो यज्ञ हुई तो उससे शिव और दक्ष के बीच में जो घोर संघर्ष द्वेष सातवां अध्याय के बाद आठवां अध्याय से सॉरी बारहवां अध्याय के बाद तेरहवां अध्याय से ध्रुव की चरित्र है जो कि उत्तानपाद के वंश के वर्णन हो रहा है, अर्थात मनोवंश की या सूर्य वंश की वर्णन चल रहा है। फिर ध्रुव महाराज की बात अंगा, अंग के पुत्र हुए बेन, बेन के पुत्र हुए पृथु महाराज, जो चौदहवां अध्याय से शुरू होता है चौथा स्कंद की। पृथु महाराज की प्रकट कैसे हुआ और बंदी जन के द्वारा उनकी स्तुति हुई, ब्राह्मण और महर्षियों के द्वारा उनके अभिषेक हुई, फिर इसके बाद पृथु महाराज के दिग्विजय के बारे में और पृथु महाराज किस प्रकार भूमिदेव को दोहन किए और सभी प्रजाओं के पोषण किए इसके भी वर्णन है। बीसवां अध्याय में भगवान पृथु की यज्ञ में प्रकट हुए जो कि पृथु महाराज गंगा के तट पर 100 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए निश्चय किए थे और उस यज्ञ में इंद्रज ने बहुत बार विघ्न डाले और आखिर में उनकी अंदर भी बहुत द्वेष उत्पन्न हुआ। दोनों वैष्णव की बीच में कैसे द्वेष उत्पन्न होता है ये भी विवरण इस 20वां अध्याय में दिया गया है। और उस समय भगवान स्वयं आकर के ये दोनों वैष्णव के बीच में जो मन मालिन्य बा द्वेष था उसको दूर किए, पृथु महाराज और इंद्र। उसके बाद भगवान ने उनको वरदान दिए कि किस प्रकार आप प्रजा की पालन करना चाहिए और आपकी निष्काम कर्मजोग की द्वारा प्रजा पालन के द्वारा आप कैसे भगवत भक्ति में समृद्ध चार कुमार के आप कैसे दर्शन प्राप्त करोगे। उसके बाद पृथु महाराज फिर अपने आप राज्य को वापस आते हैं और प्रजालोक ने उनको बहुत स्वागत और सत्कार करते हैं। तो उसके बाद महाराज पृथु ने एक विराट बड़े यज्ञ के आयोजन किए और उस यज्ञ में उन्होंने सारे महर्षि और ब्राह्मण को स्वागत किए और मुख्यतः महाराज पृथु ने अपने प्रजाओं को उपदेश दिए धर्म पालन के लिए। तो आप लोग पहले श्लोक में सुन चुके हैं कि पृथु महाराज किस प्रकार अपने प्रजाओं को संबोधित किए, उनकी भाषा कैसे थी। भागवतन की कथा ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ इसको श्रवण करें, इसके साथ बहुत महान शिक्षा है। इसमें नैष्कर्म्यम आविष्कृतम जत श्रोणन पठन विचारणं परो भक्त्य विमोचितः पर। इसको पठन करना चाहिए, सुनना चाहिए, विचार करना चाहिए, फिर इस प्रकार के विचार से भक्त्यः विमोचितः भक्तों को भी मुक्ति प्राप्त करना चाहिए। क्यों? हमारे पास कुछ कर्मस हैं, अभद्र हैं, इसलिए प्रायेषु शब्द दिया गया है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। धीरे धीरे सुनने से और पढ़ने से और उसको मनन करने से हृदय के अभद्र अनर्थ दूर होता है। अनर्थम उपसंग साक्षात भक्ति योग प्रयोजिता, ये भक्ति की ये अंग है और ये साक्षात प्रत्यक्ष रूप से ही हमारे हृदय की अनर्थ को दूर करती है। लोकस्य सद्यो विधुनोति कर्मस, ये कर्मस को सद्य तुरंत ही नष्ट करता है। ये बहुत बड़ा महौषधि है, इसलिए इस विषय को हम भक्तों के बीच में चर्चा के साथ इसको मनन भी करना चाहिए और वो जीवन में इसको अप्लाई भी करना चाहिए। पृथु महाराज एक चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन उन्होंने कैसे भगवान के सत्यावेश अवतार भी हैं, लेकिन उनकी प्रजा के साथ कैसे व्यवहार है। तो विदुर जी ने कह रहे हैं, सॉरी मैत्री जी ने कह रहे हैं, तो उन्होंने प्रजा को कैसे संबोधन किए। चारु चित्र पदम श्लघ्यम मृष्टम गूढ़म अभिक्लवम सर्वेषाम उपकारार्थम तदा अनुबदन इवाह। कहते उनकी भाषा शब्द इतनी सुंदर था, चारों शब्द से कहते बहुत सुंदर, और ऐसे शब्द हैं अलंकारिक जो कि श्रुति सुंदर हो, कान को सुनने के लिए बहुत मधुर लगे, क्योंकि भगवान के विषय में कथा ये कान को बहुत रुचिकर होता है। भवंती हृत कर्ण रसायनम कथा। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री श्री राधारास बिहारी ललिता विशाखा जी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। और कह रहे हैं कि उनकी वाक्य में कैसे था, गूढ़म अत्यंत गूढ़ बात, जैसे भगवान कह रहे हैं कि मैं सबसे गुह्यतम बात आपको बतला रहा हूं। इष्टोसी में सखा चेति तत् बख्यामि ते हितम्। गुह्य बात सबके सामने प्रकट नहीं किया जाता है, वास्तव में उनको बोलना चाहिए जो समर्पित हैं, शरणापन्न हैं और दूसरे की हित करने के उद्देश्य से हो। तो यहां पर पृथु महाराज ने कह रहे कि गूढ़ विक्लवम अत्यंत सार्थक और अर्थपूर्ण बात को बताएं, और किसके लिए, सर्वेशम अनु उपकारार्थम, सबकी उपकार हो इस उद्देश्य से बोले। इसलिए वैष्णव की बोलने का एक परिपाटी है, भगवान कहते हैं ना, स्थित प्रज्ञसा का भाषा समाधिस्तस्य केशवः स्थितिं किं प्रभासते। वाणी भी परखा जाता है, व्यक्ति मूर्ख है कि पंडित है उसको बोली से पता चलता है, उसकी चाली से भी पता चलता है, लेकिन तुरंत उसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, उनकी बोली क्या है। भाषा मतलब लक्षण है, लेकिन प्रभासते कैसे मुख से बोलता है, और जब तक कोई मौन है तब तक कोई नहीं जान सकता वो मूर्ख है कि पंडित है, और ज्यों ही बोलना शुरू करता है तब हम रिकॉग्नाइज कर सकते ये व्यक्ति कैसा है। तो उन्होंने इससे सुंदर बोली, बोले जामिमंग पुष्पितांग बाचा। भगवान भगवद गीता में कहते हैं इसे पुष्पिता बाचा नहीं बोलना चाहिए कि बहुत अर्थ उसको निकले और साधक इसको कोई अर्थ ग्रहण ना कर पाए, विपश्चिता या पंडिता। ये सिर्फ वेद की बात रहता होता है, वाद विवाद होता है, लेकिन इसमें अर्थ नहीं निकलता है, इससे गुह्य अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए बात ऐसे बोलना चाहिए कि दूसरे की प्रिय हो, सत्यम प्रियम हितम चजत, ये बोलने की शैली है, और सारम और उस विषय के सार एसेंस समझना चाहिए, किस पर्पज पर आप बोल रहे हैं। जैसे हम भक्ति वेदांत परपट पढ़ रहे हैं तो हमको ये पता चलता है कि प्रभुपाद इस श्लोक की पर क्या कहना चाह रहे हैं, क्या एसेंस देना चाहते हैं, इसको समझना चाहिए, और वो बात दूसरे के उद्वेग उत्पन्न नहीं करना चाहिए। हम कभी कभी ऐसे बात करते हैं कि दूसरे के मन में गुस्सा आ जाता है, क्रोध उत्पन्न होता है। और कभी कभी ऐसा होता है झूठे मीठे हम प्रशंसा कर देता है तो भक्त सोचता है कि मेरे पास बहुत अनंत गुण है, तो ऐसा सोचता है। लेकिन हमारा वाणी ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे के मन में उद्वेग ना दो, अनुद्वेगं करं वाक्यम, इससे वाक्य बोलना चाहिए, वाणी बोलनी चाहिए। तो ऐसे प्रकार की पृथु महाराज सुंदर वाणी से सभी प्रजाओं को स्वागत किए। राजोवाच, पृथु महाराज ने कहे, सभ्याः श्रुणतः भद्रं वः, हे सभ्य, सभी प्रकार वैष्णव सदाचार की परिपाटी भागवतम में है, इसलिए भागवत में कहा गया है असाधु साधुतांग दायिन, अति नीच चटा करो, असाधुओं को भी साधुता प्रदान करता है। इस शिक्षा से सुत गोस्वामी संबोधन करते, अथ पुंभे दिज श्रेष्ठ, ब्राह्मण में श्रेष्ठ हो आप। और फिर उनको कई प्रकार के प्रशंसा करते हैं, इति संपृष्ट संप्रश्न भगवान बादरायणी। तो पूछने वाले को भी प्रशंसा करना चाहिए और बोलने वाले को भी, ये श्रोता और वक्ता के बीच में संबंध है। तो उन्होंने कह रहे कि सभ्या श्रुणतम भद्रं वः, करे है सज्जन और उपस्थित समस्त सभ्य सदस्यों को वो स्वागत कर रहे हैं, कृपा करके आप सुनिए कैसे बात ना भद्रम, जिस बात आपकी कल्याण हो, जिस बात से आपकी कल्याण होने वाला है। साधव सत्सु जिज्ञासु भी धर्मम आवेद्यं सुमनीषितम्, कहते कि जो मनीषी हैं, जो चिंतन में लगे हुए हैं, श्रेय विषय में जिनके मन लगा हुआ है, तो उनको मनीषियां कहा गया है। मौन चरंति इति मनीषी, नहीं कि जो मौन रखते हैं वो मनीषी नहीं है। कभी कभी लोग अपने कमजोरी खोल जाएगा इसलिए कुछ बात बोलते नहीं है, लेकिन लोग उनको समझते हैं ये बहुत पहुंचा हुआ महात्मा है, बहुत उनकी उच्च चिंतन है। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि मनीषियों जो अच्छे विचार को प्रस्तुत करता है, आप सुनो, और जो भी आपकी इस सभा में जो कल्याणकारी प्रसंग है, कल्याणकारी प्रसंग है, इस विषय को आप प्रस्तुत कीजिए। और तब फिर पृथु महाराज कह रहे हैं, अहम दंड धरो राजा, दंड को धारण करने वाले राजा होते हैं। तो सन्यासी तीन दंड धारण करते हैं, त्रिदंडी भिक्षु, लेकिन किस किस प्रकार दंड है, मन वाणी और शरीर, ये तीनों को संयम रखने की दंड है। लेकिन उद्धव जी को भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति अपने मन की पर संयम नहीं रखा है प्राणायाम के द्वारा और भोजन की नियंत्रण के द्वारा, जो अपने शरीर पर संयम नहीं रखा है और भगवत चिंतन के द्वारा जो अपने मन पर संयम नहीं रखा है, शरीर प्राणायाम के द्वारा प्राण पर संयम नहीं रखा है, तो उनकी जो दंड है वो भार के समान है। तो इसलिए दंड धारण करने के पूर्व राजा को यही योग्यता होना चाहिए, क्या उनके पास ये संयमता है, क्योंकि हम राजा व गुरु को भगवान की प्रतिनिधि के रूप में मानते हैं। अर्थात हमारा इस प्रकार की गुण होना चाहिए गुरु को व राजा को, जो कि भगवान को प्रतिनिधित्व कर सके, उनकी समान आचरण होना चाहिए। और यहां पर पृथु महाराज कह रहे कि अहं दंड धरो राजा, ये ऐसे नहीं कह रहे कि मैं स्वयं कि मैं राज सिंहासन पर हूं, जैसे बैंड ने अपने को स्वयं स्वीकृत राजा ही रूप में घोषित किए और कहे कि भगवान की पूजा छोड़कर के मेरी ही पूजा करो। जब उन्होंने यज्ञ को बंद कर दिए और सभी ब्राह्मण महर्षियों ने प्रार्थना की, तो अंग ने यह उत्तर दिया उनको कि आप लोग की इस प्रकार विष्णु भगवान की पूजा है, जिस प्रकार कोई कुलट्टा स्त्री अपने स्वयं पति को त्याग करके दूसरे जाया पति की सेवा करे, वो वास्तविक दंड धारण करने वाले राजा नहीं थे। जैसे प्रभुपाद कहते हैं, कभी कभी लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं राम को छोड़कर के। राम के आदर्श कहां हैं और हम केवल सपना दिवा सपना देखते हैं कि हम राम राज्य दिला देंगे, और ये जो लोग हैं हम उनको ऐसा ही कहते हैं कि आप हमको चुनाव में जिता दीजिए फिर देखिए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इस प्रकार जो राजा हैं वो अंधे हैं, अंधा जथा अंधेव रूपनीय मानम, कहते उरुदाम्नि बद्धा तेपि स्वतंत्र उरुदाम्नि बद्धा, और सभी इस प्रकार के भौतिक कल्मश से बंधे हुए हैं, उनकी बुद्धि लोप हो गया है। लेकिन यहां पर जो महाराज पृथु कह रहे हैं, उद्गार कह रहे हैं कि अहं दंड धरो राजा प्रजा नाम यह जो जीता, कि प्रजा को संरक्षण देने के लिए मैं यहां पर राज सिंहासन पर आरूढ़ हूं, लेकिन ये राजगादी पर कौन बैठाए हैं? अभी तक उन्होंने प्रजा को शासन नहीं किए थे, जब तक यज्ञ नहीं किए थे, तो स्वयं भगवान ने उनको आदेश दिए। ये भगवान के आदेश से ही उन्होंने राज्य कार्य को संभाल रहे हैं। अब 20वां अध्याय में आप देख सकते हैं उन्होंने भगवान ने पृथु महाराज को कैसे उपदेश दिए। समः समान्वत्तम मध्यम अध्यम सुखे च दुखे च जतेन्द्रियाशयः, पहले राजा को समदृष्टि होनी चाहिए, किस किस विषय में, उत्तम मध्यम और कनिष्ठ, यही राजा के लक्षण है। हम कैसे कहेंगे कि राजा भगवान के प्रतिनिधि हैं, कि भगवान की गुण क्या है? भगवान कह रहे हैं सम अहं सर्वभूतेषु न मे द्वषी अस्ति न प्रिय, कि सभी जीव के प्रति में समान हो। ऐसा नहीं है कोई पोजिशन पर है तो उनकी फेवर में हम कुछ राय दें, और जो कमजोर भक्त हैं वा कुछ नहीं जानते भले भले हैं तो उनको हम नेग्लेक्ट कर दें। नहीं, न्याय व धर्म सबके लिए ही है, तो इसलिए समदृष्टि पहले रखना चाहिए, तब फिर हम सृष्टि को मेंटेन कर पाएंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सम अहम समम चरंतम, कुंती देवी स्तुति करती हैं, वो कह रही हैं कि भगवान सभी जीव के अंदर समान रूप में हैं, कीड़े मकोड़े के शरीर में भी भगवान रहते हैं, वो भी नेग्लेक्ट नहीं करते। जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि वास्तविक प्रजा शब्द का अर्थ यह नहीं है केवल नागरिक हैं, सिटीजन जो लोग चुनौती के द्वारा राजा को चुनते हैं, राष्ट्रपति का सरकार को चुनते हैं, सभी प्रजा हैं, क्योंकि ये भगवत दृष्टि संपन्न है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि समाह पहले आप समान दृष्टि से रखो सभी के पर, सुखें च दुखे च जितेन्द्रियाशयः, इंद्रिया और आशय का अर्थ है हृदय व मन, इसके पर विजय प्राप्त करो मयाप क्लुप्तः अखिल लोक संजतः, और जो कुछ भगवान के द्वारा विधान होता है उसको आप स्वीकार कर संतुष्ट होकर के, क्योंकि जोगी बने बिना कोई भगवान के उपदेश को नहीं समझ सकता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तस्मा जोगी भवार्चन। और जोगी कैसे बनते हैं ना, जो अपनी इंद्रियां और मन के ऊपर संयम रखा है। इसलिए भगवान कह रहे कि संतुष्टम सततम जोगी। तो संतुष्ट कैसे रहता है, सुख दुख मान अपमान सभी अवस्था में अपने मानसिक अवस्था संतुलित रखता है, वह जोगी है। विधस्व वीर अखिल लोक रक्षणम। और भगवान ने उनको आदेश दिए है वीर कि तुम सारे लोक की रक्षा करो, विधत्स्व ये व्यवस्था करो। तो इसी कारण से आज पृथु महाराज ये कह रहे हैं कि अहं दंड धरो राजा प्रजानाम यह जोजिता। और किस लिए, केवल नहीं है कि मैं चेयर पर बैठूं शासन करूं सबको ऑर्डर दूं, नहीं, वो अपने कर्तव्य के बारे में बोल रहे हैं। रक्षिता वृत्तिदाह, सभी की वृत्ति अर्थात जीविका को मैं प्रदान करो। स्वेसु सेतेसु स्थापिता पृथक। और प्रभुपाद बहुत गुरुत्व देते हैं स्वेसु सेतीसु स्थापिता, जो अपने अपने वर्ण में है तो उस वर्ण के अनुसार सबकी जीविका प्रदान करें, सबको राजा कर्म में लगाए। प्रभुपाद कहते थे कि आई एस्टैब्लिश दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस मोमेंट एंड आई हैव डन 50% वर्क एंड आई लेफ्ट रिमेनिंग 50%। तो 50% कार्य अभी प्रभुपाद छोड़े हैं, वो कार्य क्या है, वर्णाश्रम। क्योंकि वास्तविक यदि सभी वर्ण और आश्रम को ठीक रूप से नियुक्ति न कर दिया जाए तो समाज में उत्पात होता है, ये शास्त्र की विधि है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि कलियुग में सब शूद्र संभव है, तो सभी शूद्र के रूप में जन्म लिए हैं, लेकिन संस्कार आदि जो उच्यते तो हमारे विभिन्न प्रकार के संस्कार होता है। और विशेष संस्कार ये है कि हम चेतना को शुद्ध करने के लिए जो संस्कार होता है ये जो हरिनाम है, तो उससे ये चेतना से हमको पता चलेगा कि जीव की स्वाभाविक वृत्ति क्या है। इसलिए प्रभुपाद बहुत गुरुत्व दिए हैं उनकी भागवतम मॉर्निंग वॉक लेक्चर सभी में। आप मेन फैक्ट देखेंगे कि प्रभुपाद का जो डिजायर है वो वर्णाश्रम पर है, क्योंकि हमको भगवान ने कर्म करने के लिए दिए हैं ये शरीर, और ये कर्म से ही शरीर बना हुआ है। और यदि हम इस प्रकार जन्म वृत्ति की जो साइक्लिक है उसको यदि हम तोड़ना चाहते हैं तो पहले हमको प्रकृष्ट रूप में कर्म करना पड़ेगा। स्वे स्वे कर्माणि भीरतः संसिद्धिर लभते नर। तो हमको प्रॉपर एंगेजमेंट मिलना चाहिए, ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य होना चाहिए, गृहस्थ की क्या कर्तव्य होना चाहिए, वानप्रस्थ के सन्यासी की, ये सभी शास्त्र में निर्धारित है। लेकिन इसको व्यवस्थापक है इसको व्यवस्था करना चाहिए, जैसे सरकार। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम, प्रभुपाद कोट कर रहे हैं कि चातुर्वर्ण्यं मया सृष्ट, ये वर्ण आश्रम भी मेरे द्वारा ही सृष्टि हुआ है व बनाया हुआ है। और किसके आधार पर, इसके आधार क्या है, गुण और कर्म। वास्तविक जिसकी गुण नहीं है कर्म नहीं कर सकता है, और स्वभाव के अनुसार ही कर्म करना चाहिए, क्योंकि स्वभाव सभी व्यक्ति को कर्म में नियुक्ति करता है। स्वभावम नियतम कर्मम कुर्बन आपनोति कर्मिसम। यदि स्वभाव के अनुसार कोई कर्म नहीं करता है हृदय शुद्धि नहीं होता है। इसलिए भगवान दो बार इस श्लोक को दोहराए हैं, श्रेयान स्वधर्म विगुणा पर धर्मात् सुनिष्ठितात्। दूसरे की धर्म में बहुत सारी आपको फायदा हो सकता है, लाभ मिल सकता है, लेकिन आपको परमार्थ प्रदान नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि स्वभाव, अर्जुन तुम ऐसा यदि बोलते हो कि ठीक है मैं जाकर के जंगल में तपस्या करो, हिमालय चल जाऊं, इस स्वजन की बद्ध से कितना बड़ा पाप मैं उठाना मुझे उठाना पड़ेगा, तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा स्वभाव ही तुमको युद्ध में नियोजित करेगा। और अर्जुन को उन्होंने ऐसे ही कहे कि तुम्हारा अंदर ये कड़मस कहां से आ गया, ये नहीं था, आपके स्वभाव ऐसे नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि कड़ैव्यम स्मं गमः पार्थ कुतस्त्वं कस्मलमिदं, कहां से आ गया, कुतः कहां से आया, तुम क्षत्रिय हो, यहां तक कि तुम शिवजी को चुनौती दे चुके हैं युद्ध के लिए, और अभी कह रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा, और हिंजड़ा जी से बात कर रहे हो। तो ऐसे शब्द से भगवान उनको प्रेरित कर रहे हैं कि तुम स्वभाव को पहले चेक करो, तुम्हारा स्वभाव क्या है, और साधक को चाहिए कि स्वभाव को निरूपण करे, कैसे मेरे स्वभाव है, नहीं तो किससे पूछना चाहिए। तो गुरु भगवान की प्रतिनिधि हैं, और वो भी देखते हैं कि शिष्य के अंदर क्या स्वभाव है, क्या वृत्ति है, तो उस वृत्ति के अनुसार उनको लगाते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि सुंदर सुंदर पेंटिंग है यहां पर, तो प्रभुपाद ये सेवा किसको दिए, जदुरानी माताजी और अनेक प्रभुपाद के शिष्य हैं, कि वो जानते थे कि उनके अंदर ये कला है, ये कृष्ण के साथ कैसे लग सकता है। तब फिर वैराग्य है, जब युक्त होते हैं निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते, लेकिन संबंध जोड़ने के पहले ठीक रूप से हम समझना चाहिए हम कैसे स्वभाव से भगवान के साथ जोड़ सकते हैं। मशीन है, बहुत बड़े मशीन है, लेकिन सभी ऐसा नहीं है कि सब पार्ट के रूप में नियुक्त हो सकते हैं, नहीं, कोई बोल्ट के रूप में, कोई सेल के रूप में, तो अलग अलग मशीन के पार्ट के रूप में युक्त होकर के, लेकिन सभी कोऑपरेट करना चाहिए, तब फिर लक्ष्य साधित हो सकता है। तो यहां तक प्रभुपाद कहते हैं कि अगर यदि राज पदवी पर बैठकर वो सभी प्रजाओं को उनकी वृत्ति के अनुसार नियुक्त नहीं करता है, और उनकी क्या कह सकते हैं, जो न्याय देने के विषय में यदि वो ठीक रूप से न्याय प्रदान नहीं करते हैं, यहां तक कि वो जमराज भी क्यों ना हो, तो उनकी पदवी से गिरना पड़ता है। विदुर की उदाहरण देते हैं कि उन्होंने धर्मराज होकर भी उन्होंने ठीक रूप से न्याय प्रदान नहीं किए, इसलिए उनकी पदवी से गिरना पड़ा, शूद्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। तो प्रभुपाद रेफर करके कहते हैं कि यदि जीबीसी इफ दे विल नॉट डिसाइड प्रॉपर, दे विल नॉट डू लीगल एक्टिविटीज, इवन दे मे बी जमराज धर्मराज, दे विल फॉल डाउन फ्रॉम देयर पोजिशन। अनिश्चित है, कभी कभी कलिजुग में शूद्र लोग राजा की वेश धारण करते हैं, जैसे कलिजुग को परीक्षित महाराज दंड दिए, कुछ दिन के बाद फिर उनके शासन गिर जाता है, 5 साल के बाद, और 5 साल के पहले भी, तो वो राजा की प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। तो राजा बनने के लिए दंड आवश्यक है, और यह दंड है पहले पर अपने ऊपर ही इसको निर्धारण करना चाहिए। अस्थापितम पृथक, तो प्रभुपाद की तात्पर्य में जो आखिरी में जो शब्द दिया गया है कि प्रजाओं की संरक्षण राजा के द्वारा ठीक रूप से होनी चाहिए, अन्यथा ये समाज, कसाई और सरकार, ये तीनों के ऊपर ये भार बन जाता है। इसके क्या कारण है? इसके यदि कोई वास्तविक अनुभव करता है बा अनुभावक है, जिस विषय में सोचता है कि समाज में क्या व्यवस्था में क्या त्रुटि है, और हमारे भी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये इतनी बड़ी ब्रॉड सोसाइटी है, इंटरनेशनल है, लेकिन यहां पर भी हमारा जो व्यवस्था में क्या त्रुटि है। हम लोग सभी प्रयत्न करते हैं कि अच्छा प्रशासन रहे, सब सुश्रृंखलित रहे, लेकिन कमी क्या है? ताकि अनेक सारी प्रॉब्लम है, शिक्षा के अभाव है। हाँ, शिक्षा वहां प्रशिक्षण के अभाव है, ट्रेनिंग। और वह शिक्षा किससे मिलता है? ये डार्कनेस को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवतम है। और स्वयं भगवान जिस समय ये धराधाम छोड़ के गए, उद्धव ने कहा कि आप जाने की बात ये कलिजुग बले वाला हो जाएगा, सभी तरह से अधर्म ही छा जाएगा, फिर धर्म के रास्ता कहां रहेगा? तो भगवान उद्धव से कह रहे हैं कि उद्धव, मेरे जाने के बाद निश्चित रूप से कलिजुग आ जाएगी, लेकिन मेरे द्वारा जो उपदेश है, आप ही इसको ठीक रूप से ग्रहण किया है, इसलिए मेरी समान और कोई नहीं है। उद्धव, आप और मेरे में अणु मात्र की भेद नहीं है, और तुम जाकर कुछ स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम, भगवान कह रहे हैं कि मेरी कथा से वंचित हो गए हैं, अगर आपको ये कथा आप उनको सुनाओगी तो निश्चित रूप से कलिजुग की जो प्रतिक्रिया है, प्रभाव है, इससे बच जाएंगे। और स्वयं सुत गोस्वामी सोनोकादि ऋषियों को कह रहे हैं कि कृष्ण तो चल गया है, कृष्ण चल गए हैं, लेकिन जिस दिन से कृष्ण इस धराधाम को छोड़ गए हैं, उसमें अधर्म, असत्य, पाखंड ऐसे नौ बदगुण आ गया है, लेकिन इस प्रकार की जो बदगुण हैं, अवगुण हैं, इसको दूर करने के लिए स्त्री भी श्रीमद् भागवतम है, जो कलिजुग की जो अंधकार है इसको दूर करने के लिए, क्योंकि कलिजुग सबकी सत्व को हर लिया है। कली सत्व हरम पुंसा कर्ण धारम इबारनब, सुत गोस्वामी को सोनोकादि ऋषि कह रहे हैं कि कलिजुग ने सबके सत्व को हर लिया है अंदर से, इसलिए किसके पास सही डिसीजन नहीं है धर्म के विषय में, क्योंकि धर्म की जो तत्व है बहुत गुह्य है, धर्मस्य तत्व निहितम गुहायम, और जो लोग महाजन है, महान अनुभव है, तो वो ही जान सकते हैं, और उस पंथा को भी अवलंबन करना पड़ेगा, महाजन ये न गतस्य पंथा, वो पंथा को अवलंबन करना पड़ेगा, उस आदर्श को ग्रहण करना पड़ेगा। तो कली सत्व हरम पंसा, लेकिन कहते सुत गोस्वामी जी को कह रहे हैं कि आप ही एक कर्णधार हैं, हाँ, ये जो कलिजुग की जो भवार्णव है, समुद्र है, सब डूबे हुए हैं, उनको आप नौका में बैठा करके पार कर सकते हैं, क्यों ना आप ठीक तरह से भागवतम सुने हैं सुखदेव गोस्वामी से, यही भागवतम है। मैंने कह रहे हैं कि पुराण अर्कम अधुना उदिता, सबकी चेतना तो हर गया है, अंधकार हो गया है, लेकिन प्रकाश इससे मिल सकता है, भागवतम प्रकाश। तो इसलिए ये राजा की यही कर्तव्य है ये जो भागवत धर्म को समाज में स्थापन करने के लिए इस आदर्श महान आदर्श राजाओं के चरित्र को पढ़े सुने, प्रभुपाद कहते थे कि आप लोग पहले जाकर की बड़े बड़े जज को मेरी पुस्तक दो। जो लोग ल की पुस्तक पढ़ रहे हैं, और प्रभुपाद कह रहे हैं कि मेरी जितनी सारी ग्रंथ हैं, साहित्य है, वो 10,000 साल तक वो आयन की पुस्तक के रूप में रहेगा। बड़े खेत की बात है, बहुत हम में से कम है जो कि इस ग्रंथ को रुचि रखते हैं पढ़ने के लिए। तो हम अपने आप ही कलिजुग को निमंत्रित करते हैं कि आइए, फिर भौतिक जीवन के लालसा रखते हैं, हाँ, फिर आगे चलकर के कैसे ऐसे जीवन बिताएं, हाँ, ये आदर्श जीवन नहीं है। आदर्श जीवन हो तो आदर्श राजा हो, और उस आदर्श राजा को पालन करने वाले प्रजा भी हो। तो अगर यदि इस प्रकार पृथु महाराज की जो हम प्रसंग पढ़ रहे हैं, यदि उनकी चरित्र को हम चर्चा करें, आखिर में ये बताते हैं सुत गोस्वामी, अगर ये पृथु चरित्र को कोई प्रतिदिन गान करता है, सुनता है, तो शूद्र को सम्मान भी मिलता है, ब्राह्मण को द्विजत्व प्राप्त होता है। इसका मतलब हमारे पास जो सेक्रेट थ्रेड है अभी धागा के रूप में है सिर्फ, लेकिन द्विजत्व प्राप्त नहीं हुआ है। द्विजत्व प्राप्त होता है संस्कार से, मन की अच्छी भावना से। तो हम यदि इस प्रकार इसको चर्चा करें तो निश्चित रूप से हमारे मन कृष्ण भावनामृत की ओर से बढ़ेगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसकी कोई प्रश्न है? इस पर कोई वायरलेस माइक्रोफोन है?
हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने बोला कि इंद्र एक वैष्णव है और पृथु महाराज स्वयं भगवान के शक्तावेश अवतार, तो दोनों का बीच एक तरफ का झगड़ा हो रहा था, तो इस इंद्र कौन था? इंद्र का नाम जानना चाहता हूं।
तो अभी के तो इंद्र के नाम ही पुरंदर है, लेकिन पृथु महाराज के समय जो इंद्र थे तो वो तो उल्लेखित नहीं है, उनके नाम उल्लेखित नहीं है। यदि कोई रेफरेंस मिल सकता है कोई पुराण से, लेकिन दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ था तो ईर्ष्या से, प्रभुपाद परपट में लिखते हैं कि जो ईर्ष्या द्वेष समुत्थेना, कहते वैष्णव के बीच में भी इस प्रकार ईर्ष्या उत्पन्न होता है। शायद कौन सा परपट में 18 20 अध्याय की 18 श्लोक में प्रभुपाद लिखते हैं, इंद्र ने राजा पृथु की चरण पर गिरना का विचार किया, किंतु राजा इतना उदार वैष्णव था कि महाराज इंद्र को अपने चरण पर गिरने नहीं देना चाहता था। शब्द कुछ सुतपटांग लिखा है, चाहते थे ऐसा होना चाहिए, अपितु उसने तुरंत उठाकर उन्हें हृदय में लगा लिया। किंतु दोनों ही वैष्णव थे, अतः उन्हें अपनी ईर्ष्या के कारण को संयमित करना पड़ा। ईर्ष्या के कारण को संयमित करना पड़ा। क्या ईर्ष्या के कारण था? कि पृथु महाराज चाहते थे कि मुझे सोमवस्य मध्य यज्ञ संपन्न करना है। इंद्र का भी ईर्ष्या ये था कि ये सोमवस्य मध्य यज्ञ संपन्न करने के बाद मेरी पद को ले लेंगे। इसलिए भगवान दोनों की मनोमालिन्यता को मिटाने के लिए प्रकट हुए। वैष्णव के बीच मध्य सहयोग आचरण का यह सर्वोच्चम उदाहरण है कि दोनों के बीच में जब इस प्रकार ईर्ष्या उत्पन्न हो जाए, मन में फांक हो जाए, तो गुरु व वैष्णव को चाहिए, दूसरे वैष्णव को चाहिए कि आपस में मनोमालिन्यता को दूर कर दें। तो प्रभुपाद कहते हैं कि लोग वैष्णव न होने के कारण हमेशा ही आपस में झगड़ते रहते हैं, ये मनुष्य जीवन की लक्ष्य नहीं है। इसलिए फर्स्ट वी शुड हैव टू गेट रिड ऑफ दिस एनवी, जो कि यही हमारा भौतिक जीवन की मूल आधार है, बीज है, इसको स्वर्ग कहते हैं। और स्वर्ग कुछ नहीं है ये चमड़े से ढका हुआ ये जो शरीर है, कफ वात पित्त का, ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही भावना है, कंसेप्ट है, ये है द्वेष। यहां तक कि प्रभुपाद परपट में लिखे हैं, जय विजय का पतन भी भगवत धाम से इसलिए हुआ कि उन्होंने चार कुमार के प्रति द्वेष किए और लक्ष्मी जी के साथ। ऐसे तो जदगत्वा ना निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, लेकिन एक उदाहरण शिक्षा है भक्तों के लिए। यहां तक भगवत धाम में भी यदि हम इस प्रकार द्वेष और ईर्ष्या को रखें तो वो स्थान नहीं है रहने के लिए। तो मंदिर भी ऐसा ही स्थान है भगवत धाम की, हम रियलाइज कर रहे हैं और प्रत्यक्ष भी है यदि हमारा दृष्टिगोचर नहीं है, लेकिन ऐसा ही अभ्यास करना चाहिए धीरे धीरे, कैसे ईर्ष्या द्वेष के ऊपर विजय प्राप्त करें। और कोई किसके प्रश्न है? यस बोलिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जब हम लोग चैंटिंग करते हैं तो हम लोग का जो मन होता है वो बस में नहीं होता है, इधर से उधर विचलित होता रहते हैं, तो मन को कैसे कंट्रोल किया जाए?
अभ्यास ने तो कंते या वैराग्य ने च गृह्यते, शनि शनि रूपमेदम बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। केवल मंत्र को ही ध्यान कर, मंत्र में सब कुछ है, रूप आएगा लीला आएगा, उसको सुनो बहुत एकाग्र होकर।
हरे कृष्ण।
और किसकी? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरे कृष्ण।